वाद संवाद एफएम गोल्ड के श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है साइबर अपराध की चुनौती और पुलिस व्यवस्था पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व पुलिस महानिदेशक आमोद कंठ और पत्रकार रीमा पाराशर।
इंटरनेट क्रांति की बदौलत एक क्लिक पर सारी दुनिया सिमट गई है। दोस्तों रिश्तेदारों से चैटिंग से लेकर खरीदारी, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सब कुछ बस एक क्लिक पर ही हो जाता है। मगर दुनिया को समेटता यह इंटरनेट कभी आपकी दुनिया भी बदल सकता है, क्योंकि सोशल साइट्स पर की गई जरा सी मस्ती कई बार बड़े अपराध की तरफ आपको खींच ले जाती है और कई बार आप उसकी चपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ना सिर्फ जुर्माना भरना पड़ सकता है बल्कि आप भी उसको हल्के में ना ले, यही हम कह सकते हैं। क्या है आखिर साइबर अपराध और अगर आप उसमें फंसते हैं तो पुलिस की मदद आप कैसे ले सकते हैं और पुलिस व्यवस्था किस तरह से इसमें अब काफी आगे बढ़कर रोल प्ले कर रही है? आमोद जी, पहला सवाल यही है कि अगर कोई इस तरह के अपराध में फंस जाता है या इसका शिकार हो जाता है तो आखिर कैसे वो बचे?
पहले तो ये अपराध था ही नहीं और धीरे धीरे जो ये साइबर स्पेस जो बहुत बड़ा एक वर्चुअल वर्ल्ड है और उस वर्चुअल वर्ल्ड में लोग जब ऑपरेट करते करते आज इस स्थिति में पहुंच गए। हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा, खास करके बच्चे, युवा वर्ग के लोग ये वर्चुअल स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं और वो किसी वक्त ऑपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, घर के अंदर, घर के बाहर, कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं और ऑपरेट करने में जो उससे अलग अलग अपराध पैदा हो रहे हैं वो एकदम नए ढंग के अपराध हैं। अब उतने नए नहीं रहे। 2001 में हमारा कानून बना, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर जो साइबर क्राइम्स हैं, कोई 2016 का आखिरी आंकड़ा मुझे याद है, जो कोई 8,500 के आसपास केस रजिस्टर हुए और इंडियन पिनल कोड में भी वो केस रजिस्टर हो जाते हैं, उनमें कोई 3,500 के आसपास, यानी कोई 12,500 केस रजिस्टर हुए। और इसमें फिर जो अलग अलग, मैं कुछ अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहूंगा, जैसे फिशिंग शब्द का इस्तेमाल होता है, जहां के लोग बड़ी संख्या में पूरे दुनिया में लोग इस काम को कर रहे हैं, पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए या कोई फेवर एक्सटॉर्ट करने के लिए ऐसे मेल्स भेजते हैं जो फ्रॉड होते हैं। मेल का कोई मतलब नहीं होता है, वो मेल कहीं से पैदा हो जाएगा और किसी को भेजा जाएगा और उससे खास करके ऐसे लोग जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या घर में ऐसे रहने वाले लोग हैं जो इस वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं बिना समझे, वो इसके शिकार हो जाते हैं। फिशिंग की बात मैं कर रहा था। हैकिंग जो बहुत कॉमन है कि आप किसी के सिस्टम में चले जाते हैं, ट्रेसपास है, मतलब कानून की भाषा में ये क्रिमिनल ट्रेसपास है जिसमें आप किसी के अंदर चले जाते हैं और किसी के नेटवर्क में, किसी के सिस्टम में जाकर के उसकी आइडेंटिटी आप चुरा लेते हैं। आपके मेल आईडी को किसी ने अख्तियार कर लिया और फिर घुस गए, वो आपकी सारी चीज वो कर सकता है अगर आप कॉशियस नहीं है। स्टॉकिंग हैरासमेंट एक फिजिकल एक्ट है बहुत बार, कि आप किसी के पीछे लग गए और फिर आप उसको सेक्सुअली हरास कर सकते हैं, मेंटली हरास कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, हर ढंग की बात ये हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे अपराध हैं जो कि इस वर्चुअल वर्ल्ड में होते हैं। लोगों को कॉशियस रहना चाहिए कि ये बड़े सीरियस क्राइम्स हैं, ऐसा नहीं कि अपराध करके आप निकल जाएं और आपके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, कानून सख्त है।
आमोद जी, ये तो एक नशे की तरह हो गया है, जैसे आपको किसी चीज की एक तरीके से आदत पड़ जाती है, आजकल आप इसके बिना रह नहीं सकते हैं, आप चैट करते हैं, आपका सारा जो ऑफिस का काम है वो भी अभी इंटरनेट से ही चल रहा है। अगर हम एग्जांपल दें तो हम कुछ दिनों पहले देख रहे थे कि लोगों ने ये बताया कि फेसबुक पर अगर वो कई दिनों तक एक्टिवेट नहीं है, उनके पीछे से किसी ने उनकी फेसबुक साइट को हैक किया और बहुत अजीब से मैसेजेस किए और जब वो दोबारा उन्होंने देखा, उन्हें पता लगा कि हम लोग इसकी लिप्त में आ चुके हैं किसी फेक अकाउंट की वजह से, तो उनके हाथ से चीजें निकल चुकी होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतना ज्यादा इजी नहीं है इससे बाहर निकलना अगर आप चपेट में आ जाएं? चाहे भले ही बहुत सारे कानून भी बन गए हैं, पुलिस व्यवस्था भी कड़ी है, लेकिन चीजें अभी भी होनी बाकी हैं।
ऐसा नहीं है कि हर आदमी अपराध प्रवृत्ति से या अपराध करना चाहता है या उसका इंटेंशन होता है, लेकिन लोगों को आदत पड़ती है इंटरनेट एडिक्शन या फिर साइबर स्पेस में घुसने का, रहने का, लगातार महसूस करने का, ये जो एडिक्शन है, जो आदत है, आपकी कमजोरी का लोग फायदा उठाते हैं। जैसे पोर्नोग्राफी, आप देखेंगे करीब करीब इस ढंग की जो मतलब हैकिंग या इस ढंग के वर्ल्ड में जाकर के जो लोग ऑपरेट करते हैं, पोर्नोग्राफी का बहुत बड़ा उसमें एक वॉल्यूम होता है। 90% इस ढंग के क्राइम जो है होते हैं। अब जाहिर है कि लोग पोर्नोग्राफी में जाना चाहते हैं या पोर्नोग्राफी रुझाता है लोगों को, तो लोग उसमें घुस जाते हैं और बाद में वो लगता है कि कुछ और हो गया। बहुत सारे केसेस हैं, खास करके जब हम लोग स्टॉकिंग की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो छोटे उम्र के लोग होते हैं, बहुत सारे केसेस में जिनकी काफी चर्चा हो चुकी है, दिल्ली में ही किसी स्कूल में छोटे बच्चों के साथ यानी 14 साल 17 साल के लड़के लड़कियों के बीच में इस ढंग की बात की, उनकी तस्वीर को डाल दिया गया स्कूल में। जब ये बात खुली तो किसी ने रिपोर्ट कर दिया, किसी के पेरेंट्स ने रिपोर्ट करने के बाद केस हुआ, उसकी बहुत चर्चा हुई। तो फेसबुक की बात जो आप कह रहे हैं, चूंकि फेसबुक इंटरनेट का एक तरीका है और फेसबुक में लोग अपने आप को एक्सपोज भी करते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तस्वीरें आती हैं हर ढंग की, अब किस सीमा तक पहुंच करके वो तस्वीरें जो हैं वो ऑब्सीन हो जाती हैं, किस सीमा तक पहुंचने के बाद दूसरे को हर्ट करना शुरू कर देती हैं, लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत ही डिसिप्लिन और कंट्रोल की जरूरत है। कानून तो है ही, लेकिन कानून का दायरा भी है, मतलब ये कि बहुत डिफिकल्ट है इसको मॉनिटर करना। भारत वर्ष में सिस्टम्स हैं इसको मॉनिटर करने के लिए, जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को एक जिम्मेदारी दी गई है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑपरेट कर सकता है, जो ये सारे क्राइम हैं वो इंटरनेशनल कैरेक्टर में है, क्योंकि साइबर स्पेस तो ग्लोबल है, उसमें फिर अलग अलग जैसे साइबर क्राइम रिसर्च डेवलपमेंट यूनिट है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल है जो कि सीबीआई के अंदर है, जो कनेक्टेड है सारे डिस्ट्रिक्ट से, फॉरेंसिक लैब है साइबर्स के अलग, नेटवर्किंग मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, ये सारे बना दिए गए हैं, लेकिन अब तक उस हद तक कारगर नहीं हो पाए हैं।
उस हद तक कारगर नहीं हो पाया, इसी बात से ये बात निकलती है कि अगर सरकारी मंत्रालय में जाकर के भी कोई हैकर आपका कंप्यूटर हैक कर सकता है तो आम आदमी उससे अभी तक कितना अछूता है कि वो अपनी बात को आगे पहुंचा सकता है। आपको नहीं लगता है कि अभी भी व्यवस्था है लेकिन चूक भी कहीं ना कहीं है, और हैकर्स तो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं, उनसे तो यूरोप के कई देश अभी भी इतने ज्यादा लिप्त हैं इस अपराध में।
अगर आप पूरी की पूरी साइबर क्राइम्स को देखें तो अभी भी जो सीरियस साइबर क्राइम्स होते हैं जहां मॉनेटरी लॉस या गेन होता है लोगों को, कनेक्टेड लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि टोटली अनकनेक्टेड लोग होते हैं। 90% अभी भी अपराध जो है वो कनेक्टेड लोगों के बीच होता है। जैसे मान लीजिए कि साइबर क्राइम जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, चीटिंग हो रही है, फोर्जरी हो रही है, थेफ्ट हो रहा है, उसमें 90% लोग इम्प्लॉयज होते हैं या कनेक्टेड लोग होते हैं, पुराने इम्प्लॉयज होते हैं जिनके पास आपका मेल आईडी होता है, जिनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो चल रहा है। लेकिन जो लोग इसी धंधे में पड़े हुए हैं, किसी को कहीं हैक कर दे सकते हैं, किसी के सिस्टम में जा सकते हैं, उनमें वो है सिस्टम में डालने का, बहुत बड़े पैमाने पे ये काम भी चल रहा है क्रेडिट कार्ड्स का, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत कॉमन है आजकल। बहुत सारे सिस्टम्स में जो क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और बहुत जगह जो है क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। कुछ कंट्रीज जैसे श्रीलंका है, आप श्रीलंका जाएं या कुछ कंट्रीज में आप जाएं जहां क्रेडिट कार्ड आपने इस्तेमाल किया तो समझिए तो गए आप, क्योंकि फिर जो है क्रेडिट कार्ड उनके सिस्टम में चला गया। तो ये सारी बात जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। एक तरफ ये समस्या छोटे बच्चे युवा वर्ग के लोगों के साथ, वो इसके शिकार हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बिजनेसमैन हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो लोग बड़े पैमाने पर काम करते हैं वो इसके शिकार हो जाते हैं, तो ये बड़ी भारी समस्या है।
कानून की अगर बात करें तो आपको नहीं लगता कि कानून बहुत ज्यादा लचीला है? उसमें संशोधन हालांकि 2008 में भी किए गए हैं लेकिन उसके बावजूद 3 साल की सजा है और उसमें भी जमानत बहुत आसानी से हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि ये अपराध इतना हल्का है कि इसको इतनी कम सजा से या फिर जमानत जल्दी हो जाए, इसमें और कुछ कड़ाई की जरूरत नहीं है?
इन्वेस्टिगेशन मशीनरी अगर हमारी बहुत अच्छी हो जाती है और अगर हम प्रॉपर ढंग से साइबर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन कर पाएं, एविडेंस कलेक्ट कर पाएं और हम फिक्स कर सकें कि इस आदमी की गलती, और ये आदमी अचानक गलती नहीं कर गया है बल्कि इंटेंशनल किया है, और इंटेंशनल गलती करने के बाद डिलिबरेटली करके इसका इसने फायदा उठाया मान लीजिए, या किसी को वाकई इसने इन्फ्लिक्ट किया, असॉल्ट किया पूरी जिंदगी के ऊपर, तो उसमें सजा होनी चाहिए ज्यादा उस ढंग के क्राइम्स में। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, हम इनोसेंट उसको नहीं कहते हैं लेकिन बहुत रूटीन में लोग कर जाते हैं। पहले ये देखा गया था खास करके छोटे बच्चों का, युवा वर्ग के लोगों का, हालांकि वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उसको आना चाहिए, शायद सजा उनको नहीं मिलेगी, वैसे भी 3 साल ही सजा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आप कोई भी अपराध कर दें। अब ऑफकोर्स हीनस ऑफेंसेज में जो है वो सजा काफी ज्यादा तक हो सकती है क्योंकि लॉ चेंज हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इतना कहना चाहूंगा कि हाँ कुछ कैटेगरीज जो हैं इस क्राइम के, जो सीरियस ऑफेंसेज हैं जिसमें लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, उसका अपराध में क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बढ़ना चाहिए।
आमोजी, ये तो हमने उन अपराधों की बात की जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम आतंकवाद की बात करें तो वहां पे हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी साइट्स पकड़ी गई हैं कि सिर्फ और सिर्फ ईमेल के जरिए आदान प्रदान हो रहा है सूचनाओं का, आतंकी दूसरी कंट्रीज में बैठे हुए अपने आकाओं के साथ बात करते हैं और वो इंटरनेट पर लगातार बात कर रहे होते हैं और उसमें फोन की भी उनको जरूरत नहीं होती है। क्या ऐसी चीजों को अपराध की श्रेणी में जब रखा गया है तो इन पर काबू पाना ज्यादा मुश्किल आ रही है इसमें?
मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि अपराध होता है तो ये जरूरी नहीं है कि आईटी एक्ट में ही अपराध हो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एक मीडियम भी है और इस मीडियम का इस्तेमाल लोगों ने किया, लेकिन दूसरी तरफ बड़े बड़े अपराध होते हैं। जैसे आपने सही कहा, आज के माहौल को देखते हुए जब इतना बड़ा अपराध हो चुका है और उसकी इन्फॉर्मेशन भी अगर किसी ने दिया, इंटरनेट के मार्फत से दिया या टेलीफोन के मार्फत से दिया, मोबाइल के मार्फत से दिया, तो सिस्टम का इस्तेमाल किया, किसी ने खुद जाके तो नहीं कहा कि हमने एक क्राइम कमिट कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि जो डिफरेंट ऑफेंसेज बने हुए हैं, सीरियस ऑफेंसेज जो हैं, उसको तो शामिल किया जाएगा ना, लेकिन अगर किसी को लगता है कि इस्तेमाल किया गया है साइबर स्पेस का या इंटरनेट का या किसी चीज का, ये पूरे प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है किसी बड़े अपराध को करने का, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जैसे अभी अपराध हो रहे हैं टेररिज्म, इंसर्जेंसी या इस ढंग की चीजें, सेडिशन जो एंटी नेशनल एक्टिविटी उस टाइप की, तो उसको उस कैटेगरी में रखा जाए जिस कैटेगरी में हायर पनिशमेंट हो, उसके लिए अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं।
सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाए हैं और अभी गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने साइबर प्रिवेंशन के लिए एक लैब का उद्घाटन किया है द्वारका में, जिसमें कि दूसरे राज्यों की जो पुलिस है वो भी यहां पर आकर बात कर सकती है और एक हब की तरह से उसको बनाया गया है। आपको लगता है ये एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है?
दिल्ली पुलिस के मार्फत, या दिल्ली पुलिस आगे रही है, मैं दिल्ली पुलिस का हिस्सा रह चुका हूं, दिल्ली पुलिस के लिए इसकी आवश्यकता है क्योंकि दिल्ली में बहुत सेंसिटिव क्राइम्स होते हैं और साइबर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली पुलिस की कुछ महारत भी है, इन्होंने अच्छा काम किया है पहले भी और इनके यहां स्पेशलाइज यूनिट्स हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि सीबीआई में स्पेशलाइज यूनिट्स हैं और साइबर फॉरेंसिक लैब उसको हम कहेंगे, और फिर जिस ढंग से वो कह रहे हैं कि और स्टेट्स के लोग भी आ सकते हैं, तो ये सही है, उसकी आवश्यकता है क्योंकि अभी जो हमारी कैपेसिटी है, जो एग्जिस्टिंग फॉरेंसिक लैब, साइबर फॉरेंसिक लैब की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और आवश्यकता बहुत ज्यादा है, रोज सैकड़ों हजारों क्राइम्स हो रहे हैं। ये जो अभी 12,000 का फिगर मैंने दिया, ये कोई फिगर ही नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऐसे अपराध लाखों में हो रहे हैं जो मैंने बताया, अलग अलग ढंग के अपराधों को देखते हुए, इसलिए ये बड़ा कारगर साबित होगा इस ढंग का लैब और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।
सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा अपराध आप मान रहे हैं, इसमें कौन सी कैटेगरी, अगर हम फेसबुक ये सब की तो बात अलग कर दें, अभी जो इस वक्त देख रहे हैं हम कि जो पेंशन लेने वाले बुजुर्ग लोग हैं जिनको अभी बहुत ज्यादा इस सब के बारे में पता नहीं है, उन्हें अचानक से फोन आता है ओटीपी दीजिए, उनको ज्यादा पता नहीं होता, वो ओटीपी दे देते हैं और उसके बाद 10,000, 20,000 या किसी की जो लिमिट है वो पैसे उनके अकाउंट से चले जाते हैं, तो खतरा कौन से अपराध में ज्यादा लग रहा है आज की डेट में?
अगर सामयिक वार्ता हमको करनी है तो मैं कहूंगा कि टेररिज्म, उसमें इस्तेमाल साइबर स्पेस का, साइबर क्राइम्स का, उससे जुड़ना ये बहुत खतरनाक है राष्ट्रीय स्तर पे। एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो हो रही है उसमें इसका इस्तेमाल बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पे देखा जाए तो जिनकी चर्चा अभी आपने की, ऐसे लोग जो आम आदमी हैं, ऐसे लोग जो पेंशनर्स हैं जिनके पास कम पैसे हैं और पूरे जिंदगी की कमाई उन्होंने रखी हुई है किसी बैंक में, उसमें उन्होंने एक गलती कर दी और उनका पैसा निकल गया और अगर बैंकिंग सिस्टम ने उनको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन एक अच्छी बात है जो एक वार्निंग के तौर पर मैं कहना चाहूंगा लोगों को कि अभी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसकी खबर आपको मिल जाती है, टाइमली आपने इंटरवीन किया तो आप पैसे को बचा सकते हैं। लोग मिस आउट करते हैं तो फिर क्राइम हो जाता है, क्राइम तब कंप्लीट हुआ एक ढंग से जबकि पैसा आपका निकल गया, क्राइम तो कंप्लीट हो गया, अगर किसी ने ये पहल कर दी तो क्राइम हो गया उसकी तरफ से, लेकिन आपका पैसा निकल गया तो आपको लॉस हो गया, वो लॉस आप बचा सकते हैं।
कमी कहां पर लगती है, जागरूकता की कमी है, लोगों को अभी जागरूक होने की जरूरत है, या फिर आपको लगता है कि जो व्यवस्था है, जो पुलिस ट्रेनिंग है उसकी जरूरत ज्यादा है?
जागरूकता का मतलब यह है कि अधिकतर लोग अलर्ट नहीं है, ऐसे लोग जो कानून के ज्ञाता है, सारी बात को समझते हैं, वो भी अलर्ट ना हो तो उनको लॉस होगा, विक्टिम हो जा सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी सही है कि जो आज की पुलिस व्यवस्था है साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने का, जो बॉडीज बनी हुई हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सिस्टम में जा सकते हैं, पूरे के पूरे को खंगाल सकते हैं, पूरे सिस्टम को जानने के लिए कि अपराध कैसे कहां हो रहा है, इस ढंग की एक्सपर्टीज की अभी कमी है।
हमसे बातचीत की आपने, इसके लिए शुक्रिया।
धन्यवाद।
अभी आप साइबर अपराध की चुनौती और पुलिस व्यवस्था पर चर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व पुलिस महानिदेशक आमोद कंठ और पत्रकार रीमा पाराशर। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय हम एक और मुद्दे के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।